समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा में आपका हार्दिक स्वागत है। आधे घंटे के परिक्रमा कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और साथ ही हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी बात, उनको भी याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो दिव्या, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट दिव्या। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना पहुंचेंगे। श्री मोदी घाना की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे।
Quad members condemn Pahalgam terror attack, calls for action against perpetrators without any delay.
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अध्ययनों में कोविड टीकों और युवाओं की अचानक मौत के मामलों के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया।
आईएमडी इश्यूज ऑरेंज अलर्ट फॉर रेन इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया एंड इन स्पोर्ट्स।
क्रोएशिया में ग्रैंड शतरंज टूर के तीसरे चरण में मैग्नस कार्लसन और डी गुकेश के बीच फिर से मुकाबला होगा।
एंड द सेकंड क्रिकेट टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इज अंडरवे एट बर्मिंघम। England won the toss and opted to field. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Swachh Sarvekshan Grameen 2025. Well, the government has recently launched Swachh Sarvekshan Grameen, SSG 2025. It is a nationwide rural sanitation survey by the Department of Drinking Water and Sanitation, DDWS, under Ministry of Jal Shakti. It is India's largest sanitation survey in line with the first Swachh Sarvekshan conducted in 2016, in which 73 cities were evaluated and Mysuru was ranked first in the country.
और मिशन के मौजूदा चरण को 1,40,00,000,00,000 रुपए के निवेश से समर्थन मिला है, जो स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को एकीकृत करता है। बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा अभिषेक, इसमें स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण स्वच्छता अभियान जैसे कि स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग और स्वच्छता ही सेवा को बढ़ावा देता है। ये कई लोगों को प्रेरित करता है कि वो स्वच्छता अभियानों में आकर भाग लें और ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता को प्रमोट करें। और लाइट हाउस पहल और कोलकाता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, जिसे एसपीएम निवास के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना मिशन की शैक्षिक और विकासात्मक प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने के लिए, उजागर करने के लिए की गई थी और जिसका उद्देश्य अन्य क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करना है।
Yes, absolutely. And this project will conduct a comprehensive assessment of rural sanitation with a strong focus on sustaining the achievements of the open defecation free ODI plus model under the Swachh Bharat Mission Grameen SBMG. And the survey will involve sampling village evaluations and detailed surveys of households and public spaces to measure cleanliness across various parameters.
बिल्कुल। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों, मल कीचड़ प्रबंधन संयंत्रों और गोबरधन संयंत्रों की परिचालन स्थिति के साथ साथ नागरिक प्रतिक्रिया और स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग साइटों का मूल्यांकन भी शामिल है।
Yes, and Swachh Sarvekshan Grameen 2025 represents a crucial milestone in advancing India's vision of clean, healthy and sustainable rural communities. It emphasizes the collaborative efforts of panchayats, local leaders, frontline workers and citizens in strengthening rural sanitation. And this initiative will play a key role in shaping the future of rural hygiene and bringing the nation closer to realizing the goal of a Swachh Bharat.
बिल्कुल, और यहाँ पर यह भी उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG भारत की स्वच्छता कथा में एक परिवर्तनकारी चरण का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारी प्राचीन नवाचारों से समृद्ध इतिहास द्वारा संचालित है और समकालीन सरकारी प्रयासों से समर्थित है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में शुरू किए गए इस मिशन का लक्ष्य भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना था. इस विशाल उपक्रम ने सफलतापूर्वक राष्ट्रव्यापी भागीदारी जुटाई जिसने इसे विश्व स्तर पर सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन आंदोलन के रूप में चिन्हित किया. 2019 तक मिशन ने 100 मिलियन से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण का जश्न मनाया, 6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जो कि महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि थी.
Yes, and the evolution of sanitation in India is a rich tapestry woven with ancient wisdom and modern initiatives. From the Sindhu Valley civilization's innovative toilet construction to contemporary nationwide movements, the journey reflects a commitment to improving public health and hygiene. Despite historical innovations, India grappled with sanitation challenges, particularly in rural areas affecting millions. And in 2014, only 39% sanitation coverage was achieved, impacting vulnerable demographics, notably women and children. And recognizing the urgency, various initiatives were launched by the government to address this pressing issue. And in fact, Swachhata is not a one-time goal, Divya, but a continuous journey. And as we work towards a Viksit Bharat, sanitation must remain a sustained, people-led effort powered by true Jan Bhagidari. And Swachh Sarvekshan Grameen 2025 marks a pivotal step in reinforcing India's commitment to clean, healthy and sustainable rural communities. And in the months ahead, the collective efforts of panchayats, local leaders, frontline workers and citizens will shape the sanitation narrative of rural India, taking the nation closer to its goal of a Swachh Bharat.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया मन की बात संबोधन में नागार्जुन कोंडा को भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत का प्रतीक बताया. उनके उल्लेख ने आंध्र प्रदेश के इस प्राचीन द्वीप पर राष्ट्रीय ध्यान फिर से केंद्रित कर दिया है जो कभी आध्यात्मिक शिक्षा और शांति का वैश्विक केंद्र था. और अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से.
In a significant cultural spotlight, Nagarjuna Konda, a historic island located in Palnadu district of Andhra Pradesh, has once again reminded the world of India's profound Buddhist roots. Once home to renowned Mahayana Buddhist monasteries and universities, Nagarjuna Konda was a vibrant seat of learning and spirituality, attracting scholars from across the world. In his recent Man Ki Baat address, Prime Minister Narendra Modi brought national attention to Nagarjuna Konda, describing it as a symbol of India's deep-rooted Buddhist heritage and spiritual diplomacy.
पिछले दिनों मुझे वियतनाम के बहुत से लोगों ने विभिन्न माध्यमों से अपने संदेश भेजे. वो लोग भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों रिलिक्स के दर्शन कराने के लिए भारत के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे थे. मूल रूप से भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों की खोज आंध्र प्रदेश में पालनाडु जिले के नागार्जुन कोंडा में हुई थी. इस जगह का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है.
The Prime Minister also highlighted that such sacred relics had earlier been taken to countries like Thailand and Mongolia, where they received immense devotion. He urged citizens to visit heritage sites like Nagarjuna Konda and reflect on their spiritual and cultural significance. As India takes strides to promote its Buddhist legacy on global stage, Nagarjuna Konda continues to stand tall as a shining example of spiritual diplomacy and heritage preservation. This ancient island not only draws historians and pilgrims, but also unites civilizations through Buddha's timeless message of peace, compassion, and wisdom. Sai Sishlavar Parikrama, Akashwani, Vijayawada.
और अब परिक्रमा के सेगमेंट में हम चलते हैं पश्चिम यानी महाराष्ट्र की तरफ. महाराष्ट्र के कोल्हापुर की पहचान मानी जाने वाली कोल्हापुरी चप्पल आप सभी ने कभी ना कभी जरूर पहनी होगी और बहुत पसंद की जाती है. जब भी हम कोई एथनिक वियर लेते हैं या फिर कुछ कोई भी हमारे यहाँ इस तरीके का त्योहार होता है छोटे, तो हम लोग जब भी घूमते हैं कुर्ता पहनते हैं स्पेशली, तो हम कोल्हापुरी चप्पलों को बहुत प्रेफर करते हैं. लेकिन आजकल कोल्हापुरी चप्पल सिर्फ अपने वेयरिंग की वजह से नहीं, किसी और वजह से भी सुर्खियों में आ रहा है अभिषेक, क्योंकि एक विदेशी ब्रांड है उसके नकल करने के चलते कोल्हापुरी चप्पल इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी इस सांस्कृतिक धरोहर के बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी मुंबई संवाददाता, बता रही हैं कोल्हापुरी चप्पल के बारे में।
कोल्हापुरी चप्पल केवल एक फुटवेयर नहीं बल्कि कोल्हापुर के कारीगरों के हस्त कौशल का जीवंत प्रतीक है। छत्रपति शाहू महाराज की प्रेरणा से और जनता के हाथों से बनी ये चप्पल मेहनत, कला और सादगी का प्रतीक बन चुकी है। इस चप्पल को बनाने की प्रक्रिया और इसके महत्व के बारे में हमें बता रहे हैं कोल्हापुर फुटवेयर एसोसिएशन के संचालक प्रसाद शेटे।
कोल्हापुरी चप्पल का इतिहास जो है वो 13वीं सदी से शुरू हुआ है। राजा महाराजों के काल से ये चलती आ रही है। इसके लिए जो लेदर होता है उसे ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब नेचुरल तरीके से, इसका ऑयल, चूना और टैनिंग का मिक्सचर बना के ये चप्पल बनती है। और उसके बाद उसके ऊपर सोल और जो अपर पार्ट है और टो पट्टी है वो बनाया जाता है। और उसके बाद ये हमारे नेचुरल जो कलर अवेलेबल रहते हैं उससे और ऑयल से उसको फिनिशिंग किया जाता है, लेदर स्टिचिंग किया जाता है। एक चप्पल जो ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती है इसके लिए 2 से 3 दिन का समय लगता है और ये पूरी हैंडमेड होती है। और ये अगर पानी से बच के यूज की तो ये 2-3 साल तो आराम से जाती है। ये लेदर चप्पल अपने पैर का जो पसीना रहता है उसे खींच लेता है, इससे हीट वगैरह की जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उससे राहत मिलती है। और ये नेचुरल तरीके से बनी हुई रहती है इसलिए ये सॉफ्ट भी रहती है। भारत सरकार ने हमें इसके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी दिया है और कोल्हापुरी चप्पल के नाम से ही इसे जाना जाएगा।
कई सदियों से कोल्हापुर की खास पहचान रही ये कोल्हापुरी चप्पल आज देश की सीमाओं को पार कर बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है और भारत की एक अनूठी पहचान गढ़ रही है। परिक्रमा के लिए कोल्हापुर से प्रिया सरीकर के साथ, मुंबई से मैं अंकिता आपटे।
Unlike in the past, the growth of pilgrimage tourism in the country is in fast developing mode. The number of people visiting pilgrimage centers has increased. Kottayur is one of the beautiful landscapes and heritage temple sites in the state of Kerala. Vaishakha Mahotsavam is one of the special events of Kottayur, which is also known as Dakshin Kashi. We have a report.
The Kottayur Shiva temples are two famous Mahadeva temples in North Malabar region in Kerala. These temples are located in the Kottayur village of Kannur district. This rural hamlet on the banks of the river Bavilipura is also known as Dakshina Kashi. These two temples are located on the banks of two sides of the river. The main deities of worship are Lord Shiva and Parvati. The Kattan dynasty of Purulimala has a historical connection with this temple. Therefore, this place was originally called Kottayur. Over the years, it changed to Kottayur. The rituals begin with Neyattam, means pouring of ghee, which starts with the bringing of sod from Mudirerikavu in Wayanad district. The pilgrim spot is famous for its 27-day Vaishakh festival. This festival is attended by lakhs of devotees from Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh. The Vaishakha festival began on 8th June this year and will conclude on 4th July. Suresh VK for Parikrama from Kozhikode.
और माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने रक्षा पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा के 206वें आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और हमारे संवाददाता से अधिक जानकारी लेते हैं।
द डिफेंस मिनिस्ट्री कंडक्टेड अ मास Redressal camp for ex-servicemen in Tiruchirappalli Army Parade Ground to benefit all those across Tamil Nadu. Sparsh Grievance Redressal Camp was inaugurated by Honorable Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan on 30th June, where he flagged off 5 Sparsh mobile vans, which is travelling to all districts for the next 10 days to redress the grievances of defence and family pensioners at your doorstep. The minister also gave away cheques worth 1.5 crore rupees to 14 defence and family pensioners. The one-day long camp was a grand success, where more than 4,000 pensioners from Tiruchi and other other districts were benefited. More than 200 officers were deployed in resolving the grievances on the spot. Officials from all defense pension offices across India participated in this day-long redressal camp. SPASH, the System for Pension Administration Raksha, is being implemented for meeting the pension sanction and disbursement requirements for armed forces, Army, Navy, Air Force and defense civilians. The vision of SPASH is right pension at right time, a commitment to armed forces in providing a secure and reliable digital platform for all pension-related activities. It's our duty to honor the Indian Army's selfless service from the highest peak of Himalayas to the scorching deserts, defending the nation from all threats. Taking it as a topmost priority and special focus to safeguard the welfare of the ex-servicemen for their dedication, the Government of India and Defence Ministry is conducting mass redressal camps throughout the country, which is 52nd of its kind in Tamil Nadu. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashvani, Tiruchirappalli.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। क्रोएशिया में ग्रैंड शतरंज टूर के तीसरे चरण में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन और वर्तमान विश्व चैंपियन डी गुकेश के बीच फिर से मुकाबला होगा। मई में नॉर्वे शतरंज में दिलचस्प मुकाबले में गुकेश के हाथों कार्लसन की पराजय के बाद ये दोनों खिलाड़ियों के बीच पहला मुकाबला होगा। सभी खेल प्रेमियों की निगाहें इस मुकाबले पर लगी हैं।
Yes, and in cricket, India were 45 for 1 against England on day 1 in the second test of the Anderson Tendulkar Trophy series at Edgbaston in Birmingham a short while ago. Earlier, England, led by skipper Ben Stokes, won the toss and opted to bowl. Team India made three significant changes to the playing 11. Jasprit Bumrah has been rested, paving the way for pacer Akash Deep to make his debut. All-rounders Washington Sundar and Nitish Kumar Reddy have also been brought in, replacing Shardul Thakur and Sai Sudarshan. And in the first test of the five-match series, England defeated India by 5 wickets to lead 1-0 at the Headingley Leeds. And now on to some business news. The benchmark domestic equity indices today paired early gains and ended with modest losses amid mixed global cues. The 30-share index of the Bombay Stock Exchange Sensex dropped 288 points to close at 83,410. The National Stock Exchange Nifty 50 declined 88 points to settle at 25,453. Both indices dropped over 0.3% each.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we remember freedom fighter Yusuf Meher Ali, who died on the 2nd of July 1950. Yusuf Meher Ali is credited with giving the slogans Simon Go Back and Quit India.
Simon Go Back!
Simon Go Back!
Simon Go Back!
Yusuf Meher Ali was born on the 23rd of September 1903. He founded the National Militia, Bombay Youth League and the Congress Socialist Party and played a role in several peasant and trade union movements. He also took part in the protests against the Simon Commission. He took part in the Quit India movement and was imprisoned. He was elected mayor of Bombay in 1942 while he was imprisoned in Yerawada Central Prison.
A notable writer, Yusuf Ali is credited with writing Leaders of India, The Price of Liberty and Underground Movement. The nationalist leader continued to work for the people until his death in 1950.
We also remember freedom fighter Bakht Khan, who was appointed General of the Hindustan Army of Bahadur Shah Zafar on the 2nd of July 1857. A resident of Bareilly, Uttar Pradesh, Khan was initially working as a subedar in the artillery of the British Indian Army.
He left the British service during the First War of Indian Independence in 1857 and joined the independence activists at Bareilly. He became a brigadier of the activists in Bareilly and made arrangements for arms and ammunition. In June 1857, he marched towards Delhi along with his follower.
Bakht Khan reached Delhi on the 2nd of July 1857 and was welcomed by Bahadur Shah Zafar, who called him Farzand and appointed him as the commander-in-chief with the title General. Bakht Khan reorganized the army in Delhi, gave them 6 months' advance salary and ordered them to maintain strict discipline. He also played a key role in forming the administrative council called Jalsa-e-Fauji wa Mulki to maintain law and order in Delhi.
Although he succeeded in ousting the British forces from various strongholds in Delhi, he lost in the Battle of Najafgarh on 25th of August 1857. Bakht Khan left Delhi after its fall to the British in September 1857, but continued to fight the British in Lucknow and Rohilkhand. After the uprising was suppressed, Bakht Khan escaped towards Nepal and was reported to have been killed there in action in 1859.
We also remember Mata Savan, who took part in the First War of Independence in 1857 in Gujarat. Savan highlighted the cruelties of the British and inspired his neighbours to raise their arms to overthrow the foreign rule. He was captured by the British and charged with sedition and rebellion against the company rule. Savan was sentenced to imprisonment for life with labour in irons. He died in captivity on the 2nd of July 1859 in the Andaman Islands. We salute the brave son of the soil.
We also remember martyrs Dodhai, Bhagwan and Sahadev, residents of district Gorakhpur, Uttar Pradesh, who were sentenced to death on the 2nd of July 1923. During the non-cooperation movement, the British police of Chauri Chaura Thana opened fire on the peaceful protesters in the area, causing deaths and injuries to many. When the police ran out of ammunition and found the gathering infuriated by the firing, they retreated and hid themselves inside the police station. A few infuriated activists sprayed kerosene oil on the building and set it on fire, killing all the 23 policemen inside.
Dodhai, Bhagwan and Sahadev were among the accused and were convicted for taking part in the Chauri Chaura case. They were sentenced to death and hanged on the 2nd of July 1923.
And we are also remembering Ernest Miller Hemingway, who passed away on this day in 1961. He was an American novelist, short story writer and journalist, known for an economical, understated style that influenced later 20th century writers. He has been romanticized for his adventurous lifestyle and outspoken, blunt public image. Some of his 7 novels, 6 short story collections, and 2 non-fiction works have become classics of American literature, and he was awarded the 1954 Nobel Prize in Literature.
बिल्कुल, और इसीलिए उनको अर्नेस्ट हेमिंग्वे को उनके साहित्य कार्यों के लिए अमेरिकी साहित्य का क्लासिक्स भी माना जाता है. और आज ही जयंती है आशालता बावगांवकर की. वे मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी. उन्होंने कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से बड़े पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी थी. दूरदर्शन पर उन्होंने अपने कई सीरियलों से घर घर में पहचान बनाई थी. उन्हें मूल रूप से आशालता के नाम से जाना जाता था. वे गोवा की रहने वाली थी और उन्होंने सबसे पहले कोंकणी और मराठी नाटकों में अभिनय करना शुरू किया था. आशालता वाबगांवकर ने कई शानदार हिंदी फिल्मों में भी काम किया. उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म जंजीर थी. इस फिल्म में आशालता ने अमिताभ बच्चन की सौतेली मां का किरदार निभाया. ये फिल्म 1973 में आई थी. वहीं आशालता को बॉलीवुड में असली पहचान बासु चटर्जी की फिल्म अपने पराये से मिली थी. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सह कलाकार पुरस्कार मिला था. आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये डायलॉग.
आखिर खाओगे क्यों नहीं, भूखे मरोगे क्या? अच्छा बाबा, मान लिया मेरी गलती है. मैं बच्चों के पढ़ाई के मामले में कुछ नहीं कहूंगी. तुम्हारे जो मन में आए करना बस. तुमसे भी कभी कोई जीता है? जब देखो तब खाना बन. मालूम है बड़ी बहू खुशामद करेगी. अरे भाई, गुस्सा हम पर है तो अपने आप पर क्यों जुल्म कर रही हो?
सुना है मछली देवर आ रहे हैं?
हाँ, परसों तक आ जाएंगे.
और आज ही प्रसिद्ध उड़िया कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार कालिंदी चरण पाणिग्रही की जयंती है. वो अपनी महान कृति मतिरा मनीषा के लिए प्रसिद्ध हैं. उन्हें उड़िया साहित्य में योगदान के लिए पद्म भूषण प्रदान किया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. कालिंदी चरण के काव्य में प्रणय चेतना के मुख्य आधार हैं. प्रेम लज्जा का विषय नहीं, वो युवाओं का अधिकार है. प्रेम शाश्वत है. प्रेमी एक दूसरे के परिपूरक तथा मुक्ति के पथ प्रदर्शक भी हैं. प्रेम से जीवन आकर्षक बनते हैं और इसी प्रेम को पाने के लिए कवि कालिंदी चरण बार बार जन्म लेने की तमन्ना रखते हैं.
मिशेल दे नोस्ट्रोडेम, यूजुअली लैटिनाइज्ड एज नोस्ट्रोडेमस, पास्ड ऑन दिस डे इन 1566. ही वाज अ फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर, अपोथेकरी, फिजिशियन एंड रेप्यूटेड सियर हु इज बेस्ट नोन फॉर हिज बुक ले प्रोफिटेस, published in 1555, a collection of 942 poetic quatrains allegedly predicting future events. And Mario Francis Puzo passed away on this day in 1999. He was an American author and screenwriter. He wrote crime novels about the Italian-American mafia and the Sicilian mafia, most notably The Godfather in 1969, which he later co-adapted into a film trilogy directed by Francis Ford Coppola. He received the Academy Award for Best Adapted Screenplay for the first film in 1972 and for Part 2 in 1974. Puzo also wrote the original screenplay for the 1978 Superman film and its 1980 sequel. His final novel, The Family, was released posthumously in 2001.
और आज जन्मदिन है विद्या बिंदु सिंह का. उनका लोक साहित्य के क्षेत्र में बहुत नाम है. कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, लोक गीत, हर विषय पर उन्होंने अपनी कलम चलाई है. पर सबसे ज्यादा उनको अवधि लोक साहित्य के लिए सराहना मिली है. इसमें अवधि भाषा के लोक गीत, मुहावरे, राम से जुड़े कई प्रसंग भी हैं जिनको सिर्फ कहा और सुना जाता रहा है. साहित्य में उनके योगदान के लिए 2022 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह की 118 रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, लोक गीत संग्रह भी हैं. उन्होंने खासतौर पर अवधि लोक गीतों पर काम किया. साथ ही सीता के विषय में उनकी रचना सीता सुरजुवा का ज्योति भी बहुत चर्चित रही.
Yes, and Dilip Narayan Sardesai passed away on this day in 2007. He was an Indian international cricketer. He played tests for the Indian national team as a batsman, the first Goa-born cricketer to play for India, and was often regarded as one of India's best batsmen against spin, although Indian batsmen have been known to play better against spin.
और आज ही जयंती है मोहम्मद अजीज की. वे भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक हैं और जिन्होंने बंगाली, ओडिया और हिंदी फिल्मों में गाने गाए. उन्होंने कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में गाना शुरू किया था. वहीं से उन्होंने अपनी गायकी की शुरुआत की थी और उन्हें प्यार से लोग मुन्ना भी बोलते थे. उनका जन्म भी कोलकाता शहर में एक गरीब फैमिली में हुआ था. और उनकी पहली हिंदी फिल्म थी अंबर, और पहली जो फिल्म थी जहां से उन्होंने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया था वो बंगाली फिल्म ज्योति थी. और
एंड ही आल्सो मेड हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन फिल्म्स इन उड़िया फिल्म टाइटल्ड जागा हतारे पागा डायरेक्टेड बाय मोहम्मद मोहसिन. एंड लेटर ही अपीयर्ड विद अ हिंदी फिल्म टाइटल अंबर लाइक यू सेड इन 1984. एंड हिज टू प्रोमिनेंट सॉन्ग्स इंक्लूडिंग मर्द टांगे वाला कंपोज बाय अन्नू मलिक वर इंट्रोड्यूस इन मर्द.
Isn't it?
So let's go ahead and listen to that song.
अपनी खनकती आवाज से 80-90 के दशक में उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा. मोहम्मद अजीज ने 20,000 से भी ज्यादा गाने गाए और हर भाषा में गाने गाए. उन्हें मोहम्मद रफी का उत्तराधिकारी भी माना गया. आइए सुनते हैं उनका ही गाया हुआ एक और गीत.
Yes, and Hermann Hesse was born on this day in 1877. He was a German-Swiss poet and novelist and the 1946 Nobel Prize in Literature laureate. His interest in Eastern religious, spiritual and philosophical traditions, combined with his involvement with the Jungian analysis, helped to shape his literary work. His best-known novels include Damien, Steppenwolf, Siddharth, Narcissus, Goldman, The Glass Bead Game, each of which explores an individual's search for authenticity, self-knowledge and spirituality, and also Divya. Mill Swami Annadurai was born on this day in 1958. He's an Indian scientist working as a vice president for Tamil Nadu State Council for Science and Technology, Chairman Board of Governors, National Design and Research Forum. He's often dubbed as the Moon Man of India. And before taking this assignment, he was with the Indian Space Research Organization and served as a director of the Indian Space Research Organization Satellite Center. And during his 36 years of service in the Indian Space Research Organization, he had some of major contributions.
और आज ही जन्मदिन है सुहास एलवाई का. वे भारत के जाने माने पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं. सुहास 2007 बैच के देश के सबसे पहले IAS ऑफिसर हैं. जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देश का प्रतिनिधित्व किया। सुहास एलवाय ने बीजिंग एशियन चैंपियनशिप में पहली बार SL4 लोअर स्टैंडिंग में हिस्सा लिया और स्वर्ण पर कब्जा जमाया। टोक्यो में सुहास ने 5 सितंबर 2021 को मेन सिंगल्स SL4 में देश के लिए रजत पदक जीता।
So with that, we wind up this edition of Parikrama. So from Divya Tomar and me, Abhishek Mukhopadhyay, till the next time, bye and
Namaskar. Namaskar.